और देखते ही देखते वो सारे मच्छर नमरूद की पूरी फौज का गोश्त तक खा गए। उन्होंने नमरूद की फौज को हड्डियों का ढांचा बना दिया और वो नमरूद को किसी मच्छर ने नहीं खाया बल्कि उन मच्छरों में से एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया, फिर नाक के जरिए उसके दिमाग में चला गया और उसका दिमाग खाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, आपने कई ख़तरनाक बीमारियों के बारे में सुना होगा, वो बीमारियाँ जो इंसान को शदीद तकलीफ़ में डाल देती हैं, जैसे कैंसर है, एड्स है, ब्रेन ट्यूमर, ये इस टाइप की और बीमारियाँ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी और ख़तरनाक और तकलीफ़ देह बीमारी के बारे में बताऊँगा जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। ये तकलीफ़ जिस इंसान को हुई थी उसकी ज़िंदगी उसके लिए अजाब बन गई थी। उस बीमारी ने उसे दुनिया के सामने जलील और रुस्वा करके रख दिया था। ये बीमारी इतनी अजीब थी कि दुनिया भर के डॉक्टर्स और सर्जन मिलकर भी इसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। और ये बीमारी किसी आम शख्स को नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान को हुई थी जिसके पास दुनिया की बेपनाह दौलत थी। नाज़रीन, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि दुनिया का बादशाह नमरूद था। वही नमरूद जिसने अपनी ताकत, दौलत और गुरूर के नशे में खुदा होने का दावा कर दिया था। वो नमरूद जो ऐसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हुआ था, उसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर, किसी मेडिसिन या किसी जादूगर के पास नहीं था। उस बीमारी ने नमरूद को ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाई थी बल्कि उसके गुरूर और तकब्बुर को भी खाक में मिला दिया था। आखिर ये बीमारी, ये तकलीफ़ क्या थी? और सबसे बढ़कर क्वेश्चन कि नमरूद जैसे बड़े बादशाह को ये बीमारी कैसे हुई थी, ये जानने के लिए आपको आज की वीडियो एंड तक देखनी होगी। ये लोगों से अपनी पूजा करवाता था, काहिन और नजूमी बड़ी कसरत से इसके दरबार में हाजिर रहते। नमरूद खुद खुदा होने का दावेदार था, इसीलिए लोगों से अपने सामने सजदे करवाता और उनकी पूरी कौम जहां अपने बादशाह नमरूद को खुदा मानती थी वहीं बुत परस्ती यानी बुतों की भी इबादत किया करती थी। इसी तरह वो पूरी कौम गुमराही की सारी लिमिट्स को क्रॉस कर चुकी थी। और अल्लाह पाक का ये कानून है कि जब कोई कौम गुमराह हो जाती है, भटक जाती है, तो अल्लाह पाक उसकी हिदायत के लिए किसी नबी को भेजता है। बिल्कुल इसी तरह नमरूद और उसकी कौम की रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी, अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले एक अजीब वाक़िया हुआ था। हुआ कुछ यूं कि एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा सामने आया है और उसकी रोशनी के सामने चांद और सूरज बिल्कुल बेनूर हो गए। इससे वो बहुत घबराया और डरा और उसने काहिनों, जादूगरों से उस ख्वाब का मतलब पूछा। उन्होंने बताया कि इस साल तेरी सल्तनत में एक लड़का पैदा होगा जिसकी वजह से तेरी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी और तुझे खुदा मानने वाले उसके हाथ से हलाक होंगे। नाज़रीन, ये ख़बर सुनकर नमरूद परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया और उसने हुक्म दिया कि अब से जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और मर्दों औरतों को अलग रखा जाए ताकि औलादें ना हों, और उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया। मगर खुदा की लिखी तकदीर को कौन टाल सकता था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा हामला प्रेग्नेंट हुई और काहिनों ने नमरूद को उसकी खबर दे दी कि ये बच्चा हमल में आ गया है। लेकिन चूंकि आप अलैहिस्सलाम की वालदा साहिबा की एज कम थी, इसलिए उनका हमल किसी तरह पहचाना ही नहीं गया। ये अल्लाह पाक की कुदरत थी कि जब आप अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालदा उसे उस तहखाने में लेकर चली गई जो आपके वालिद ने शहर से दूर खोद कर तैयार किया था। वहाँ आपकी विलादत हुई और वहीं आप रहे। पत्थरों से उस तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। रोज़ाना वालदा साहिबा दूध पिलाने के लिए आती थी और जब वहाँ पहुँचती थी तो देखती थी कि आप अपनी उंगली का किनारा चूस रहे हैं और उससे दूध निकल रहा है। आप समझ गईं कि आप अलैहिस्सलाम के लिए खुदा गैब से रिस्क भेज रहा है। इस बात में इख्तिलाफ़ है कि आप अलैहिस्सलाम तय खाने में कितना टाइम रहे। कुछ किताबों में आता है कि 7 साल रहे, कुछ में 13 साल और कुछ में आप 17 साल तक उसी तय खाने में रहे। जब आपने अपनी कौम को शिर्क करते देखा तो उन्हें समझाया कि ये सही नहीं है। आपने दीन हक की तबलीग शुरू फरमाई और लोगों को अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया, मगर कौम ने आपकी बात ना मानी। फिर एक मरतबा कुछ यूँ हुआ कि आप अलैहिस्सलाम ने इनके एक ग्रुप से बुतों के बारे में डिबेट की, तो इन लोगों ने कहा कि कल हमारी ईद है, आप वहाँ चलें और देखें कि हमारा दीन और तरीके को फॉलो करने में कैसा मज़ा आता है और कितनी खुशी मिलती है। ये इनका एक ईयरली सालाना मेला लगता था। वो इस दिन जंगल में जाते और वहाँ शाम तक फालतू के कामों और खेल कूद में लगे रहते। फिर वापसी के वक्त बुत खाने में जाते और बुतों की पूजा करते। इसके बाद अपने घरों को वापस चले जाते। चुनाचे जब नेक्स्ट डे आया और आपसे मेले में जाने को कहा गया, तो आपने इन्हें कोई रीज़न बताकर मेले में जाने से मना कर दिया और वो लोग आपके बगैर ही मेले में चले गए। जब उनके बाकी रहने वाले और कमज़ोर लोग जो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे आपके पास से गुजरे, तो आपने फरमाया, मैं तुम्हारे बूतों का बुरा हाल कर दूंगा। आपकी इस बात को कुछ लोगों ने सुन लिया। इसके बाद आप बुत खाने में गए और उन सब बुतों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन उनके बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। और ये करने का ऑब्जेक्टिव ये था आपका कि कौम वाले उस बड़े बुत से पूछें कि इन छोटे बुतों का हाल कैसे हुआ, ये क्यों टूटे पड़े हैं और कुल्हाड़ा तेरी गर्दन पे कैसे रखा है। और यूं उन पर एक बड़े बुत का आजिज़ होना, किसी काम का ना होना, ये प्रूफ हो जाएगा और उन्हें रियलाइज़ होगा कि ऐसे लाचार बेबस खुदा नहीं हो सकते। एनीवेज, जब कौम के लोग शाम को वापस आए और बुतखाने में पहुंचे और उन्होंने देखा कि बुत तो टूटे पड़े हैं, तो आपस में कहने लगे कि किसी ने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया होगा, बेशक वो बहुत बड़ा जालिम है। कुछ लोग कहने लगे कि हमने एक नौजवान को उन्हें बुरा कहते हुए सुना है जिसको इब्राहिम कहा जाता है, हमारा ख्याल है कि उसी ने ये किया होगा। जब ये खबर जालिम जाबिर नमरूद और उसके वजीरों तक पहुंची, तो वो कहने लगे, इसे लोगों के सामने ले आओ, शायद लोग गवाही दें कि ये हज़रत इब्राहिम ही का कारनामा है। चुनाचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उन लोगों ने कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है? आपने इसका तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया कि इनके इस बड़े बुत ने गुस्से से ऐसा किया होगा कि इसके होते तुम इसके छोटे को पूछते हो। इसके कंधे पर कुल्हाड़ा होने से ऐसे ही समझा जा सकता है, मुझसे क्या पूछते हो, तुम इनसे पूछो, अगर ये बोलते हैं तो खुद बताएंगे कि इनके साथ ये किसने किया है। सजेशन देने का मकसद ये था कि इनकी कौम इस बात पर गौर करे कि जो बोल नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकता, वो खुदा कैसे हो सकता है। चुनाचे जब आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, तो वो गौर करने लगे और समझ गए कि हज़रत इब्राहिम सच कह रहे हैं और सही रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। इन्हें समझ आ गया कि जो अपने कंधे से कुल्हाड़ा तक नहीं हटा सकता, वो अपने पुजारी को मुसीबत से कैसे बचाएगा, उनको पूजने वालों को कैसे बचाएगा, उनके काम कैसे आएगा। ये जान चुके थे पर मानना नहीं चाहते थे, इनके दिलों पर पर्दा पड़ चुका था। और फिर नमरूद भी सामने था जो खुद अपने आप को खुदा कहलवाता था। तो जब नमरूद और दूसरे लोगों ने देखा कि हम दलील से हज़रत इब्राहिम को मनवा नहीं सकते, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देने का फ़ैसला किया। और इसके लिए इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का प्लान बनाया, ताकि आप अलैहिस्सलाम की शहादत सबके लिए एक बिग लेसन हो जाए और इसके बाद कोई भी बुतों को बुरा भरा बोलने की जुर्रत ना करें। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को एक मकान में कैद कर दिया और कौथा, जो कि एक बस्ती थी वहाँ पर, उसमें पत्थरों की एक लंबी चौड़ी दीवार बनवाई। फिर सब लकड़ियाँ जमा करने लग गए और सब ने बड़े जोश से इसमें पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि बीमार औरतें भी नज़र मान रही थी कि अगर इन्हें शिफा मिल जाए तो इब्राहिम के जलाने के लिए लकड़ियाँ लाएंगी। फिर ज़मीन में एक बहुत बड़ा और गहरा गड़ा खोदा गया, उसे लकड़ियों से भरा गया, फिर उसमें आग लगा दी गई। नाज़रीन, रूए ज़मीन पर कभी इतनी बड़ी आग नहीं देखी गई। जब हज़रत इब्राहिम ने आसमान की तरफ नज़र उठाई, तो अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, तू वाहिद है और मैं ज़मीन में तन्हा हूँ, और ज़मीन में मेरे अलावा और कोई बंदा ऐसा नहीं जो तेरी इबादत करता हो, मुझे तू ही काफ़ी है और तू बहुत ही अच्छा कारसाज है। इसके बाद अल्लाह पाक के खलील को जलने के लिए आग में डाल दिया गया। इम्तिहान कंप्लीट हुआ, रहमत इलाही का दरिया जोश में आया और आग को हुक्म हुआ, या नारू कूनी बर्दं व सलामन अला इब्राहिम, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। हुक्म मिलते ही आग ने अपनी फितरत ही छोड़ दी, रोशनी तो बाकी रही मगर उसकी गर्मी ख़त्म हो गई। उसने उन रस्सियों के सिवा किसी और चीज़ को ना जलाया जिनसे आप अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। उस वक्त हज़रत जिब्रील आपके साथ थे, आपके मुंह पर पसीना पोंछ रहे थे, बस इसके सिवा आपको आग ने कोई तकलीफ ना दी। कुफार ने जब ये देखा तो वह हैरान हो गए कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, उनका प्लान फ्लॉप हो चुका था। आप उस आग में 40 या 50 दिन रहे। आप फरमाया करते कि मुझे इस टाइम पीरियड में जो राहत और खुशी और सुकून हासिल हुआ, वैसा उससे निकलने के बाद कभी ना मिल सका। कितना अच्छा होता कि मैं सारी ज़िंदगी इसी में गुजारता। एनीवेज नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम जब सलामती के साथ आग से बाहर तशरीफ ले आए तो कुफार को फिर समझाया और तौहीद की दावत दी और ईमान ना लाने की सूरत में अंजाम से भी डराया। इस वाक़े के बाद वह गुजरता रहा। कुछ अरसे बाद इलाके में कहत पड़ गया और उस वक्त गल्ले यानी खाने पीने की चीज़ें नमरूद के कब्ज़े में थी, सो लोग इसके पास जाते और गल्ले ले आते। हज़रत इब्राहिम भी इसी मकसद से उसके पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप अलैहिस्सलाम और नमरूद की डिबेट हुई। नमरूद आपके अकायद और दावत के बारे में पहले से जानता था। अब जब हज़रत इब्राहिम सामने आए तो पूछने लगा कि तुम्हारा रब कौन है जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो? तो आपने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। ये एक बेहतरीन दलील थी जिसमें बताया गया कि तू एक बेजान गंदा नापाक कतरा था जिसे उस रब ने इंसानी सूरत दी और ज़िंदगी अता फरमाई, फिर तेरी उम्र पूरी होने पर तुझे मौत देगा। इस दलील का जवाब नमरूद ना दे सका क्योंकि इतनी ऑब्वियस बात को वो कैसे डिनाई कर सकता था, लेकिन क्राउड के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने खामखा की बहस कर दी। उसने दो लोगों को बुलाया, उनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा, देखो मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मौत देता हूँ। इस बात में बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं था। कहाँ कत्ल करना और छोड़ना और कहाँ मौत और हयात पैदा करना। वहाँ पर मौजूद अकलमंद लोगों की निगाहों में हज़रत इब्राहिम अपनी बात साबित कर चुके थे और इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इस दलील का जवाब मुमकिन नहीं है, लेकिन चूँकि नमरूद ने शर्म मिटाने के लिए कुछ ना कुछ जवाब दे ही दिया था अगरचे वो गलत था, इसलिए हज़रत इब्राहिम ने इसको दूसरी ऐसी दलील दी जिसका कोई जवाब भी ना दिया जा सकता। आपने फरमाया कि सूरज जो मशरिक यानी ईस्ट से निकलता है उसे मगरिब यानी वेस्ट से निकाल दे। ये चैलेंज सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब ना दे सका। नमरूद जब इस दलील को काउंटर ना कर सका और जब डिबेट में लाजवाब हो गया तो उसने हज़रत इब्राहिम को अपने दरबार से निकाल दिया और इतने अजीम नबी की शान में गुस्ताखी कर डाली। लेकिन अब नमरूद का टाइम पूरा हो चुका था। अब उसे अनकरीब उसकी हठधर्मी और अल्लाह से दुश्मनी की सज़ा मिलने वाली थी। लेकिन इसे सज़ा देने से पहले अल्लाह पाक ने एक और आखिरी मौका दिया और उसके पास इंसानी शक्ल में एक फ़रिश्ता भेजा जिसने नमरूद को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। लेकिन नमरूद ने फिर अकड़ दिखाई और कहने लगा कि कौन रब, खुदा तो मैं ही हूँ। यह वाकया 3 मरतबा पेश आया और हर बार नमरूद ने इनकार कर दिया और ख़ुद को खुदा कहने लगा। तो फिर फरिश्ते ने उससे कहा कि तुम अपना लश्कर तैयार कर लो, मैं भी अपना लश्कर तैयार कर लेता हूँ, फिर देख लेते हैं कि किसके पास कितनी पावर है और कौन खुदा है। नमरूद ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया और अगली सुबह वो सूरज निकलने से पहले ही अपना पूरा लश्कर लेकर निकल पड़ा और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ उससे मुकाबले के लिए अल्लाह पाक ने एक बादल भेजा, फिर उस बादल में से अचानक मच्छर निकलना शुरू हुए और उन मच्छरों की तादाद इतनी ज़्यादा थी नाज़रीन कि इनकी वजह से सूरज की रोशनी छुप गई। जस्ट इमेजिन करें कि इतने सारे मच्छर कि सूरज की रोशनी ही छुप गई। फिर अल्लाह पाक ने उस बज़ाहिर कमज़ोर तरीन लश्कर जो मच्छरों की सूरत में था उससे अपने आप को खुदा कहलाने वाले नमरूद की फ़ौज पर हमला कर दिया और देखते ही देखते वो सारे मच्छर नमरूद की पूरी फ़ौज का गोश्त तक खा गए। जी हाँ नाज़रीन, वो मच्छर सिर्फ खून नहीं चूस रहे थे बल्कि वो उनका गोश्त तक खा गए थे। उन्होंने नमरूद की फ़ौज को हड्डियों का ढांचा बना दिया और वो नमरूद बेबस होकर सिर्फ देखता ही रह गया। मगर नमरूद का क्या हुआ? क्या नमरूद का गोश्त भी मच्छरों ने खा लिया? नहीं, नमरूद के साथ वही मामला हुआ जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्ट में किया था। नमरूद को अगर इतनी आसानी से मौत मिल जाती तो दूसरों के लिए इबरत और एक मैसेज कैसे बनता? इसलिए नमरूद को किसी मच्छर ने नहीं खाया बल्कि उन मच्छरों में से एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया, फिर नाक के ज़रिए उसके दिमाग में चला गया और उसका दिमाग खाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, 400 ईयर्स तक वो मच्छर उसका दिमाग खाता रहा और यूं नमरूद सख्त तरीन तकलीफ़ और अजाब में गिरफ्तार हो गया। और ये सिर्फ एक तकलीफ़ थी, उसके साथ साथ दूसरी तकलीफ़ ये भी थी कि उसे सिर्फ उसी हालत में सुकून मिलता जब उसके सर पर कोई चीज़ मारी जाती। इसी तरह उसके सर पर 400 साल तक जूते लगाए जाते रहे जिससे उसको लोगों के सामने जलील और रुसवा करके रख दिया। अपने आप को खुदा कहलाने वाला अब लोगों से कह रहा था कि मेरे सर पे जूता मारो। रिवायात में ये भी बात आती है कि जो भी इसके महल में आता پہلے اسے جوتا لگا تھا، تو یوں اللہ نے نمرود کو اس کے اسلام دشمنی کی سخت اور ذلت بھری سزا دی جو اس کی موت پر جا کر ختم ہوئی۔